हरे कृष्ण। तो ये भागवतम का बहुत ही फेमस श्लोक है, गोप्य कामाद भयात कमसो वैशा चैद्यादयो नृपा संबंधात दुष्मह्या स्नेहा यूयम भक्तिया वयम विभो। हे राधा युधिष्ठिर, गोपियाँ अपने विषय वासना से, कंस भय से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्ष्या से, शदुगण कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध से, तुम सब कृष्ण के प्रति अपार स्नेह से तथा सारे सामान्य भक्त अपनी भक्ति से, तो नारद मुनि अपने आप को सब सामान्य भक्तों की कैटेगरी में डाल रहे हैं, तथा सारे सामान्य भक्त अपनी भक्ति से कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सके हैं। एक बारी एक भगवान के भक्ति कह सकते हैं या संत व्यक्ति थे, तो वो रोज जो है वो गृहस्थ आश्रम में थे, तो रोज वो जो है अपने घर के बाहर जाते थे सुबह और आवाज़ लगाते थे कि यदि कोई, वो किसी भूखे व्यक्ति को ढूंढते थे, यदि कोई प्रसाद लेना चाहता है तो मेरे घर पे आ जाए, प्रसाद ले ले। तो ऐसा उनका रोज का रूटीन था ये कि कोई भी उन्हें ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, कोई गरीब से, कोई ब्राह्मण या कोई भी ऐसे भूखे व्यक्ति हैं तो उनका वो प्रसाद खिलाएंगे। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, उन्होंने आवाज़ मारी तो एक व्यक्ति उनको मिला। पहले कुछ देर तक तो कुछ नहीं, कोई नहीं मिला, फिर एक व्यक्ति मिला तो उन्होंने उसको बुलाया, बुला के आप मेरे घर में आओ और भोजन करो। तो उन्होंने बड़े प्रेम से उनको जो है भगवान का प्रसाद खिलाया। ये भक्त थे लेकिन दूसरे भक्त जानते नहीं थे कि दूसरा जो अनजान व्यक्ति आया है प्रसाद लेने कौन है ये। तो फिर और फिर प्रसाद लेने के बाद में उन्होंने पूछा कि आप भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान के बारे में बताइए कुछ या भगवान के बारे में कहिए। तो वो व्यक्ति बोला, भगवान ये कौन है, मैं तो भगवान में विश्वास नहीं रखता, मैं नास्तिक हूँ। तो ये जो भक्त है इनको बड़ा ग्लानि हुई कि मैंने एक नास्तिक व्यक्ति को भोजन खिलाया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वह भगवान में श्रद्धा रखता हो, ऐसे व्यक्ति को खिलाए। तो वो भगवान के पास गए और जो है अपनी ग्लानि प्रकट करने लगे कि भगवान मेरे से बड़ी गलती हो गई है कि आज मैंने एक नास्तिक व्यक्ति को जो है भोजन खिलाया कराया और वो आप में विश्वास नहीं रखता इत्यादि। तो ऐसे वो अपने हृदय में बड़ा कष्ट प्रकट कर रहे थे, उनको बड़ा कष्ट हो रहा था। तो तभी विग्रहों से आवाज़ आई, बोले तुमने आज पहली बारी एक नास्तिक को भोजन कराया है, मैं रोज इतने सारे नास्तिकों को भोजन कराता हूँ, है कि नहीं। तो कहने का अर्थ है, इस कथा का शीर्षक बात क्या है, जो प्रश्न महाराज परीक्षित ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से स्कंद के प्रारंभ के अंदर कि भगवान पक्षपात करते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं, लेकिन भगवान को समदर्शी होना चाहिए, कृष्णा गॉड शुड बी इक्विपोइज्ड, लेकिन लगता है कि देवताओं के प्रति जो है वो पक्षपात करते हैं और दानवों के प्रति जो है वो मतलब उनका विनाश करते हैं। तो नहीं वास्तविक, और सुखदेव गोस्वामी फिर यही उत्तर दे रहे हैं कि नहीं वास्तविक में भगवान समदर्शी हैं, है कि नहीं। और हम सबको इस प्रकार देखिए, रोज सूर्य की रोशनी मिल रही है, चाहे भगवान विश्वास करें चाहे ना करें, वायु रोज मिल रही है, जल मिल रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो भगवान ने विश्वास रखते हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, बाकी को सूर्य देवता का कोई बिल देना पड़ रहा हो या उनको सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही हो। तो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी बहुत फिलोसॉफिकली उत्तर देके कि भगवान समदर्शी हैं, और भगवान किस प्रकार के समदर्शी हैं कि वो बहुत दार्शनिक रूप से बड़ी चर्चा करते हैं यहाँ पर कि भगवान निर्गुण हैं, भगवान अव्यक्त हैं, भगवान तीनों गुणों से परे हैं, और बड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं परीक्षित महाराज से, और फिर अपने इस कथन की पुष्टि करने के लिए कथा बताते हैं उनको, क्या कहाँ पर लेके जाते हैं कि एक बारी महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में नारद मुनि से युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा, वहाँ क्या कथा, वहाँ क्या इंसिडेंट हुआ था, घटना क्या हुई थी। घटना ये हुई थी कि शिशुपाल जो हैं वो बचपन से, जब से उसने होश संभाला था तब से ही भगवान की निंदा करता था, और उस भरी सभा के अंदर भगवान को इतने कठोर शब्द बोलने लगा और बिल्कुल नॉन स्टॉप जो है वो भगवान को गालियाँ दे रहा था, और भगवान ने जब सुदर्शन से उसका वध कर दिया तो हुआ क्या, उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और भगवान के शरीर में समा गया। तो बोले ऐसा कैसे, उसको इस आयुज्य मुक्ति कैसे प्राप्त हुई। तो युधिष्ठिर महाराज ने यह प्रश्न पूछा, तो नारद मुनि इसका उत्तर देते हैं कि भगवान जो हैं इस भौतिक जगत के द्वंद्वों से परे हैं। इस भौतिक जगत में सुख दुख हानि लाभ ईर्ष्या मान अपमान इत्यादि प्रशंसा या निंदा ये सब इस भौतिक जगत की डुअलिटीज हैं। भगवान के संबंध में ये सारी डुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। भगवान का कोई निंदा करे चाहे कोई ग्लोरीफाई करे, फॉर कृष्णा इज द सेम थिंग, है कि नहीं? क्योंकि कृष्ण ट्रांसेंडेंटल है, ये उनका निर्गुण स्वरूप जो कैरेक्टरिस्टिक है लक्षण है कि भगवान की को चाहे को निंदा करे चाहे को प्रशंसा करे वास्तव भगवान की दृष्टि से देखा जाए तो सेम है, हमारी दृष्टि से अलग है वो, क्योंकि हम भौतिक जगत के अंदर हैं। तो इसी का उत्तर देते हुए वो बोल रहे हैं कि किसी भी कारण से यदि कोई भगवान से संबंधित हो जाता है तो क्या होता है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। ऐसा है क्योंकि भगवान दिव्य है, भगवान इस भौतिक जगत में नहीं है, ये भगवान की विशेष महानता है। और फिर उदाहरण देते हैं कि कीट पेशस कृता रुद्ध कुड़ियायाम तमुस तमनस तम अनुस्मरण सनभ योगे न विंदते तत्स्वरूपताम। जिस प्रकार एक मधुमक्खी द्वारा दीवाल के छेद में बंदी बनाया गया एक कीड़ा सदैव भय तथा शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है और बाद में स्वयं मधुमक्खी बन जाता है, कि जो कीड़ा मधुमक्खी के द्वारा बंदी बना लिया जाता है तो डर के मारे दिन रात उसी मधुमक्खी के बारे में सोचता रहता है, और मधुमक्खी के बारे में सोचने के कारण क्या होता है, एक दिन वही मधुमक्खी बन जाता है चिंतन करने मात्र से। ऐसा है तो तभी वो आगे बता रहे हैं कि भगवान के साथ कोई किसी भी संबंध से अगर भगवान को जो है अप्रोच करता है तो वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है। हाँ, पिछले श्लोक के अंदर यह था कामा द्वेषा भया स्नेहा यथा भक्तिश्वरे मन आवेश तदघम हित्वा बहव तत् गतिम गता। अनेक अनेक व्यक्तियों ने अत्यंत ध्यान से तथा भावपूर्ण पापपूर्ण कर्मों को त्याग कर मात्र कृष्ण का चिंतन करने से मुक्ति प्राप्त की है। यह ध्यान काम वासनाओं शत्रुतापूर्ण भावनाओं भय स्नेह या भक्ति के कारण हो सकता है। ये पांच विधियां उन्होंने बताई है। अब मैं यह बताऊंगा कि कोई किस प्रकार भगवान में अपने मन को एकाग्र करके कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो पिछले श्लोक में बताया कि कोई भी इन प्रकार के संबंध से भगवान से अगर संबंध बनाता है इन प्रकार की भावनाओं से तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान को अपने मन में लगा रहा है। और आज के श्लोक में ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गोपियों ने किस प्रकार से भगवान के प्रति जो है कृपा प्राप्त की, काम वासनाओं से, कंस ने भय से भयात कंसो, और शिशुपाल आदि राजाओं ने किसके द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, देश के द्वारा। द्वेष कहाँ था, विशेषकर जो रुक्मिणी के विवाह के अंदर जब भगवान कृष्ण सभी राजाओं के सामने रुक्मिणी का हरण करके ले गए तो सब शिशुपाल जरासंध इत्यादि जितने राजा थे भगवान के प्रति उन्होंने आक्रमण किया। फिर संबंधात कृष्ण यह स्नेहात यूयम, और जो वृष्णिवंशी हैं उन्होंने अपने पारिवारिक संबंध से, और स्नेहात यूयम, और आप सब जो हैं पांडव लोग हैं उनका भगवान के प्रति दिव्य स्नेह है, और भक्तिया वयम विपोर, हम जो साधारण भक्त उन्होंने भक्ति के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त की है। और कृष्ण गीता में चौथे अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में बता रहे हैं वितराग भया क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहव ज्ञान तपसा भूता मद्भाव मागता। आसक्ति बद्धता क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतः तन्मय होकर और मेरे शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। और फिर कृष्ण गीता में आगे कह रहे हैं ये यतामाम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि जो जिस प्रकार से मेरी शरण में आता है मैं उसी प्रकार से उसकी इच्छाओं को पूरा करता हूँ। तो मैं तो निष्पक्ष हूँ कि यदि कोई मेरे से शत्रुता के भाव में मेरे से संबंध बनाना चाहता है तो मैं शत्रुता रूप से उसे उसके साथ व्यवहार करूंगा, यदि कोई प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहता है तो प्रेम से व्यवहार करूंगा। तो इस श्लोक में यही बताया गया है गोप्यः कामात् भयात् कंसो, कि अनेकों अनेक लोगों के बारे में बताया गया है जिनका भगवान से अलग अलग प्रकार का रिलेशन था और भगवान ने उनके उस प्रकार के संबंध के अनुरूप उनसे जो है रेसिप्रोकेट किया, है कि नहीं? और इसीलिए ठाकुर भक्ति विनोद बताते हैं कि कृष्ण का एक नाम क्या है, कृष्ण का कैरेक्टरिस्टिक है अखिल रसामृत मूर्ति, आई थिंक रूप गोस्वामी से भक्ति रसामृत सिंधु के कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति हैं, सभी रसों की अखिल रस अमृत मूर्ति है कि जितने भी रस हैं भगवान उन सब के जो है पर्सोनिफिकेशन है, लग गया वो बता रहे हैं कृष्ण। और कृष्ण से कोई भी किसी भी भावना से डील करता है वो ट्रांसेंडेंटल है। और अगले श्लोक के अंदर जो है, जो कल श्लोक आएगा उसके अंदर एक और बहुत विशेष चीज नारद मुनि बताने वाले युधिष्ठिर महाराज को। तो जो गोपियां हैं उन्होंने काम वासना से भगवान को जो है से अपना संबंध बनाया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि ये साधारण काम वासना नहीं है। चैतन्य चरितामृत के अंदर गोपियों के काम वासना को किससे कंपेयर किया गया है? सोने से। और लेकिन इस जगत में जो काम वासना है उसको लोहे के द्वारा। प्रभुपाद बता रहे हैं कि दोनों जो है मेटल हैं, दोनों धातु हैं, लेकिन फिर भी सोना सोना है और लोहा लोहा है। जय श्री राधा राधिका भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की। तो आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कि किसी की आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले उसे काम वासना बोलते हैं। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति की इच्छा करना इसे प्रेम बोलते हैं। है दोनों एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन। लस्ट मीन्स फुलफिलिंग अवर ओन, फुलफिलिंग अवर सेंस ग्रेटिफिकेशन। And prem means fulfilling Krishna's sense gratification. Krishna की इंद्रिय तृप्ति करना उसे बोलते हैं प्रेम, और अपनी स्व इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखना इसे बोलते हैं काम। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण की प्रति गोपियों की काममय इच्छाओं की तुलना सोने से की गई और भौतिक विषय वासनाओं की तुलना लोहे से की गई है। फिर आगे बता रहे भयात कंसो, कंस की जो ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है वास्तविकता के अंदर। तीसरे स्कंद के प्रारंभ में विदुर जी उद्धव जी से मिलते हैं। विदुर जी तीर्थाटन की जो है तीर्थाटन की ओर निकलते हैं और उद्धव जी से मिलते हैं और दोनों जो हैं भक्त कृष्ण चर्चा करने लगते हैं, कृष्ण भगवान की दिव्य लीलाओं की चर्चा करने लगते हैं। विदुर जी सॉरी कृष्ण और सभी संबंधियों के बारे में पूछते हैं कि वो कैसे हैं। तो उद्धव जी बताते हैं कि इस जिस प्रकार सूर्यास्त हो जाता है उसी प्रकार इस धरती का जो है अशुभ समय आ गया है कि कृष्ण अप्रकट हो गए हैं। और फिर उद्धव जी जो हैं कृष्ण के अनेकों अनेक लीलाओं के बारे में चर्चा करने लगते हैं, कृष्ण की वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला इत्यादि। और वो बोल रहे हैं संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ, उद्धव जी कहते हैं। और फिर उद्धव जी जो हैं बताते हैं इन सभी चर्चाओं के बारे में जो नारद मुनि यहां कर रहे हैं सेम उद्धव जी वहां भी करते हैं। तो वहां पर जो है बताते हैं उद्धव जी कि किस प्रकार कृष्ण अजन्मा होते हुए वसुदेव के बंदी ग्रह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण में व्रत चले गए और वहां शत्रु भय से प्रच्छन्न रहते रहे, तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए। ये सारी मोहित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। तो वसुदेव जी याद कर रहे हैं कि किस प्रकार कृष्ण देवकी और वसुदेव के गर्भ से कारागृह प्रकट हुए और कंस के भय से वसुदेव उन्हें जो है वहां से हटाना चाहते थे। तो भगवान हालांकि असीम बलशाली होते हुए भी वो गोकुल जाना स्वीकार किया उन्हें वसुदेव जी के द्वारा। और इस प्रसंग में जो है उद्धव जी एक और चीज कहते हैं शिशुपाल के बारे में जो यहाँ पे आई है, द्वेषा चैत्या दयो। यद्धर्म सुनो बतराजसो ये निरीक्षत्रिक्ष्वस्य यनं त्रिलोकः कार्ष्ण्येन चाद्येह गतं विधातुः अर्वाक्षितौ कौशलमिति अमन्यत। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए जाने वाले राजसूय यज्ञ की वेदी में उच्चतर मध्य तथा अधोलोकों से सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि मनुष्यों के सृष्टा ब्रह्मा के चरम कौशल पूर्ण सृष्टि है। वो कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं कि जितने लोगों ने वहां दर्शन किए राजसूय यज्ञ में, उन सब ने एक ही निष्कर्ष पे आए कि ब्रह्मा जी जो हैं, उनका जो बेस्ट जितना टैलेंट है, उनका जितना उनके अंदर कौशल है, वो सब एकत्रित होकर जब ब्रह्मा जी ने किसी को बनाया तो वो इस कृष्ण की सृष्टि है। ऐसे होता है कि भगवान इतने सुंदर हैं और कृष्ण की चर्चा को याद कर रहे हैं उद्धव जी, कृष्ण की सुंदरता को याद कर रहे हैं। और फिर कृष्ण की दिव्य लीला, उसी सभा के अंदर कृष्ण ने एक लीला की, वो याद कर रहे हैं। दृष्ट्वा भवद्भि ननु राजसूये चैत्यस्य कृष्णं दुष्टोऽपि सिद्धिः यां योगिना संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्त्वद्विरहं सहेत। आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की, यद्यपि वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था। वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचि पूर्वक कामना करते हैं, भला उनके विछोह को कौन सह सकता है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे उद्धव जी भी उसी निष्कर्ष पे आ रहे हैं जो नारद मुनि ने दिया कि भक्ति के द्वारा भगवान के प्रति कृष्ण भगवान होना इतना आसान नहीं है, लेकिन भगवान से द्वेषवश उनके साथ कृष्ण भावना में होना ज्यादा आसान है। और उसी की पुष्टि यहाँ पे उद्धव जी भी कर रहे हैं कि बड़े बड़े योगी भी जो है योगाभ्यास के द्वारा वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए जो शिशुपाल ने भय के द्वेष के द्वारा प्राप्त की। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है कि कोई द्वेष भाव से भी भगवान के प्रति वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है? तो ये जो है एक शिष्य बताए द्वेषात। और इसी के लिए मैं एक पास टाइम और बताना चाहता हूँ भागवतम के दशम स्कंद से, जो कि यहाँ पे मेंशन किया भयात कमसो, कि क्यों, ऐसा क्या विशेष बात है इस भय से कम से क्या, जो भगवान से इस प्रकार का शत्रुतापूर्ण भाव रखते थे, उनमें ऐसी योग्यता थी क्या कि वो कृष्ण भावना भावित हुए और प्यूरिफाई हुए? तो वो लीला है कंस वध की, भयात कंसो। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जो है कंस की महिमा का वर्णन करेंगे कुछ श्लोकों के अंदर। तो जब भगवान कृष्ण लगभग 11 साल के हो गए और फिर मथुरा गए, वहां पे कुवलिया भी उन्होंने हाथी का वध किया, फिर वह धनुष तोड़ा और फिर जो है चाणूर और मुष्टिक का वध किया उन्होंने, और फिर एक दो और ऐसे जितने रेस्टलेस थे उनका वध किया। और फिर भगवान कृष्ण को बहुत क्रोध आया जब कंस ने देखा कि मार दिया है, तो कंस को बहुत भय प्रतीत हुआ और तुरंत वो अपने राज सिंहासन पर बैठा था, बहुत ही ऊंचे डायस के ऊपर बैठा हुआ था, और वहां से बोलने लगा कि वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को जो है इसको नगरी के बाहर निकाल दो, उस नंद महाराज को जो है नंद को जो है बंदी बना लो, और इन सारे ग्वाल बालों की सारी संपत्ति हड़प लो, वसुदेव को मार दो और मेरे पिता उग्रसेन को भी मार दो। और जब इस प्रकार से कंस बहुत चिल्ला रहा था, फिर उसने अपनी जो है भगवान कृष्ण को बहुत गुस्सा आया, और भगवान जो है तुरंत कूद करके कहाँ पहुंचे, उसके राज सिंहासन पे। और जब भगवान को इस पर आते हुए देखा तो कंस ने भय से अपनी तलवार और ढाल निकाल ली कि बचने के लिए, लेकिन और कंस जो है उस तलवार को बार बार से हिला रहा था, इधर उधर भाग रहा था, लेकिन कृष्ण ने तुरंत ही क्या किया, उसको छाती से उसको पकड़ा और घसीटते हुए जो है उसके बालों से उसको पकड़ते हुए घसीटते हुए उसके राजमुकुट को गिराते हुए उस डाय से बिल्कुल जो एरिना था जहाँ पे उसको कुश्ती हो रही थी वहां पे घसीट के लेके आए, और भगवान ने जो है उसके छाती पर चढ़ करके और फिर उसके ऊपर जो है अपनी मुष्टि का प्रहार किया, और कंस जो है वहीं पर जो है उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा हमने सुना था, अब इसके रेफरेंस को हम फिर भी देख रहे हैं, किसने बताया था, कंस के अंदर 100,000 हाथियों का बल था, भीम और दुर्योधन 10,000 हाथी का बल था, अब ये रेफरेंस हम चेक कर रहे हैं, एक दो भक्तों सुना था हमने कि 1,00,000 हाथियों का बल था, तो कई लोगों को वहां पे जो है यकीन नहीं हुआ कि कंस मर गया इतनी आसानी से, है ना। तो उनको लगा शायद बेहोश हो गया होगा डर के मारे, या इतनी ऊंचाई से गिरा है शायद इसलिए बेहोश हो गया होगा। तो भगवान को इतना क्रोध था, भगवान ने क्या किया आपको मालूम है, यहाँ बताया है, एज अ लायन ड्रैग्स अ डेड एलिफेंट द लॉर्ड देन ड्रैग्ड कंसा'स डेड बॉडी अलोंग द ग्राउंड इन फुल व्यू ऑफ एवरी प्रेजेंट। कि भगवान ने कंस के शव को पकड़ करके पूरे उस रेस्टिंग एरिया में घसीटते हुए गए, भगवान इतने क्रोधित थे और उसको पूरे ताकि सब देख सके कि यह कंस मर चुका है। क्योंकि जो लोग कंस के साथ ही थे उनको यकीन नहीं होता कि कंस मारा गया है, और जो कंस के से डरते थे उनको लगा था कि अभी बेहोश हुआ है वापस उठेगा फिर हमको परेशान करेगा। दोनों को आश्वस्त करने के लिए भगवान ने जो है उसके शव को पूरे उस एरिना के अंदर जो है घसीटा भगवान ने। और फिर कंस की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, स नित्य उद्विग्ना धिया तमीश्वरम पिबन अदन्वा विचरन स्वपन श्वसन तदर्श चक्रा युधम अग्रतो यतस तदैव रूपम दुर्वापमाप। बोल रहे हैं स नित्य उद्विग्न धिया तमीश्वरम, उसका जो मन था वो हर समय धिया तमीश्वरम नित्य रूप से परेशान था कि कृष्ण आएंगे मेरा वध कर देंगे, विष्णु आएगा मेरा वध कर देगा। कॉन्स्टेंटली किस समय, पिबन अदन वा विचरन स्वपन श्वसन, पिबन जब वो पीता था, अदन जब वो खाता था, जब वो चलता था, जब वो सपना देखता था या केवल सांस लेता था, वो जो राजा था कंस था वो हर समय भगवान को साक्षात अपने समय अपना चक्र लेके देखा मौजूद देखता था, वो जिधर भी हर समय उसको सर्वत्र इष्ट देव वसूर थी, इस प्रकार से हर समय उसे जो है अपने इष्ट देव भय से वो कृष्ण भावना भावित था, हर जगह उसे कंस कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे। तो ये उसकी जो है कंस इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित था। तो यहाँ पे इस चीज की जो है अगले श्लोक के अंदर ये भी एक बड़ा फेमस श्लोक है, कतमो निवेन स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्। बोल रहे हैं कि किसी ना किसी प्रकार से किसी भी विधि से जो उपरोक्त 5 विधियां दी गई हैं, किसी भी प्रकार से यदि हम अपने मन को कृष्ण में लगाते हैं तो क्या होता है, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, चाहे वो शत्रुता से, चाहे वो प्रेम से, चाहे वो काम वासना से, चाहे ईर्ष्या द्वेष से, किसी प्रकार से। तस्मात् केनापि उपायेन कृष्ण मनः कृष्ण निवेशयेत्, अपने मन को कृष्ण में लगाना। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है, बिकॉज कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल, कृष्ण जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, तो उनके साथ जो भी संबंध होगा वो दिव्य है। तो इसीलिए वो कृष्ण बता रहे हैं, क्योंकि इन सब राजाओं का संबंध चाहे प्रतिकूल भाव से अनुकूल भाव से कृष्ण के साथ था, इसीलिए उनको कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा महान दुष्ट है, बड़ा शक्तिशाली है तो भगवान को आना पड़ेगा उसका वध करने के लिए, ऐसा नहीं है कि अगर उसके अंदर यह योग्यता है। मान लीजिए कंस बड़ा महापराक्रमी था, ये उसकी योग्यता नहीं थी, उसकी योग्यता थी कि वो भगवान से भय था, भयभीत था। शिशुपाल ऐसा नहीं कि चाहे पूरी दुनिया को गाली दे तो थोड़ी कोई फर्क पड़ता है, लेकिन भगवान से द्वेष करता था, ये महान बात थी शिशुपाल की। तो वो बता रहे ऐसे एक महान राजा हुए थे वेन, वो भी महान नास्तिक थे और बड़े अधर्मी थे। और कोई बता रहा था मेरे को अभी 2 दिन पहले कि वेन की क्या खास बात थी, वो इतने अधर्मी थे बचपन में भी जब खेलते थे अगर हार जाते तो बच्चों को मार देते थे, ऐसा नहीं कुछ थप्पड़ मार देते या कुछ ऐसे, वो जान से मार देते उनको, बचपन खेल खेल में बच्चों को मार डालते थे, इतने वो बचपन से पाप करने में उनकी रुचि थी ऐसे नहीं अभी सोचे खेल खेल में बच्चों को मारते तो लड़ाई हुई एक बात है चलो, लेकिन कोई उनको जान से ही मार डाले, बहन बचपन से ऐसे थे। तो बोल रहे हैं कि ऐसे महादुष्ट राजा थे, तो ऐसा नहीं कि उसको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं कतमोपि न वेनः स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति, तो ऐसा नहीं कि राजा वेन थे, राजा वेन जैसे नास्तिक इन 5 विधियों में से कृष्ण के द्वारा कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करने में असमर्थ रहने से मोक्ष नहीं पा सकते थे। तो बड़ी बात यह है कि उनका कृष्ण संबंध था, है कि नहीं, ये महान बात है, नहीं जाती। और वेन का नहीं था तो चाहे फिर कितना बलशाली हो, कितना भी दुष्ट हो, कुकर्मी हो, अधर्मी हो, पापी हो, वो क्या किया, ब्राह्मण ने श्राप के द्वारा उसे मार डाला, कि बड़ी बात थोड़ी थी। तो इसीलिए कभी कभी कोई सोचते हैं कि हमें बड़ा, अगर ये बड़ा आसान तरीका है हिरण्यकशिपु की तरह या कंस के द्वारा या शिशुपाल की तरह जो है भगवान से प्रतिकूल भाव में संबंध रखो, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो आगे नारद मुनि भी बोल देंगे ऐसे है कि एक्चुअली केवल शिशुपाल के द्वारा ये संभव था, अन्य किसी द्वारा संभव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जय विजय थे। और फिर कथा आएगी जो है ऋषि प्रश्न पूछेंगे, अच्छा वो भगवान के पार्षद थे फिर उनको कैसे इस भौतिक जगत में आ गए, ये तो मैं समझ में नहीं आ रहा। तो बोल रहे हैं कि उन्हें ऐसे श्राप मिला सनक सनातन के द्वारा। फिर दूसरे को आप प्रश्न पूछेंगे, श्राप मिला भगवान के पार्षदों को, ऐसा क्यों? फिर घटना आएगी कि सतुष कुमार वहां गए थे। और फिर लेकिन उसके अंदर एक सस्पेंस छोड़ देंगे कि हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष तो बड़े दुष्ट थे लेकिन उनका बेटा था वो कौन था? महान भक्त था, उनका चौथा बेटा था हिरण्यकश्यप का, प्रहलाद का। तो वो एक और प्रश्न पूछते हैं, अरे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष इतने दुष्ट थे तो प्रहलाद भक्त कैसे हुआ? और फिर अंतिम दस अध्याय जो है, आखिरी के दस अभी आने वाले दस अध्याय प्रहलाद जी कथा प्रारंभ होगी इस प्रकार से। तो वो नारद मुनि बोलेंगे युधिष्ठिर महाराज से। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान से किसी प्रकार का संबंध भगवान की कृपा प्राप्त करता है, ऐसे ही हम देखते हैं। और वैसे ही भगवान के भक्तों के साथ भी संबंध रखना बड़ा रुचिकर होता है। जैसे भगवान से किसी प्रकार का संबंध, छठे स्कंद के अंदर यमराज जी भी श्लोक बोलते हैं, सांकेत्यम पारिहास्यम, की यदि कोई कोई संकेत करते बोलते, देखो वो हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं, कोई हंसते हुए भी बोलेगा देखो ये हरे कृष्ण वाले सहजिया खाली सेंटिमेंटल भावुक भावुक लोग हैं, नाच कूद रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं? या किसी प्रकार को निंदा करते हुए बोलेगा, किसी प्रकार से यदि कोई भगवान का नाम भी ले लेता है तो वो शुद्ध हो जाता है, ऐसा है। तो भगवान के नाम की इतनी महिमा है, ऐसा नहीं कि प्रेम भक्ति से भगवान का नाम लेगा तभी भी। ऐसे ही उद्धव जी जो हैं तीसरे स्कंद के अंदर वो ये बता रहे हैं कि तथैव चान्ये नरलोक वीरास आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रै पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास प्रपूता पद्मापुरस्य। तो बोल रहे हैं जो उद्धव जी बता रहे हैं कि कृष्ण तो इतने सुंदर हैं, है कि नहीं? इतने सुंदर थे कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था तो जो सामने वाले वॉरियर्स थे, जो योद्धागण थे, वो भी कृष्ण की सुंदरता का पान कर रहे हैं तो वो लड़ेंगे कैसे? जब वो कृष्ण इतने सुंदर थे कि वो कृष्ण की सुंदरता का पान कर रहे हैं तो लड़ेंगे कैसे उस समय, है कि नहीं? वो तो कृष्ण की सुंदरता का अपने जो है पी रहे हैं, उसका रस पान कर रहे हैं। तो और ऐसे ही जो है तो, और जब वो इस प्रकार की अवस्था में थे तो अर्जुन के परम पवित्र बाण उनको जो है उनका वध कर देते थे। और अर्जुन के परम पवित्र बाणों के द्वारा उनका वध होने से क्या होता था? उनकी जितनी पाप राशि थी सब नष्ट हो जाती थी। ऐसा तात्पर्य प्रभा जी बता रहे हैं कि अर्जुन के बाणों से वध होने का अर्थ है ऑलमोस्ट साक्षात कृष्ण के द्वारा वध किया जाना किसी का। और कृष्ण सामने थे, देखिए जब अर्जुन मार रहे हैं कृष्ण की पीठ अर्जुन के सामने है, लेकिन जो सामने वाला योद्धा है वो तो भगवान के सुंदर मुख का रसास्वादन कर रहा है। तो जो लोग कृष्ण की सुंदरता को अप्रिशिएट कर पा रहे थे उनको तुरंत भगवान ने वैकुंठ लोक में भेज दिया, क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर कुछ सुकृति थी। लेकिन जो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे थे जैसे शिशुपाल थे, उनको कौन सी मुक्ति प्राप्त हुई? सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, ऐसे है। तो निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों से के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अच्छा लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। तो जो है और तात्पर्य प्रभा जी एक लाइन बता रहे हैं, शिशुपाल जैसे व्यक्ति का उनके द्वारा संहार किया जाना उतना ही शुभ है जितना कि श्रद्धावान की रक्षा के लिए किए जाने वाला कार्य। भौतिक जगत में देखिए ये द्वंद है, या तो हम किसी को माला पहनाएंगे या किसी को सजा देंगे, है कि नहीं? और दोनों अलग अलग बातें हैं, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं किसी ने हत्या की है और जज उसको देगा टू बी हैंग टिल डेथ, उसको मृत्यु दंड देगा तो हम बोलेंगे जज ने बड़ी कृपा की है, है कि नहीं? उसको हम ये तो नहीं बोलेंगे। अगर पुलिस किसी को पुलिस स्टेशन लाके थर्ड डिग्री टॉर्चर कर देगी तो हम ये तो नहीं बोलेंगे पुलिस की बड़ी कृपा प्राप्त हुई है उसे। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ में यदि भगवान कृष्ण का वध भी करते हैं या किसी की किसी को जो है प्रेम के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, दोनों ही उस व्यक्ति के लिए उतना शुभ है। इसलिए हम पहले बता रहे थे कि कृष्ण इन द्वंद्वों से परे हैं बिल्कुल। तो कृष्ण से कोई भी संबंध चाहे वो अनुकूल भाव से चाहे प्रतिकूल भाव से उतना ही शुभ है। हालांकि वो शुद्ध भक्ति नहीं है वो अलग बात है, वो भक्तों के प्रति रसास्वादन नहीं कर सकता। वही प्रभा तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं कि जो गति कृष्ण के शत्रुओं को प्राप्त हुई वो तो नहीं प्राप्त होनी चाहिए नंद महाराज और कृष्ण के सब जो प्रेमी करते थे उनको तो वो जो है गति नहीं प्राप्त होनी चाहिए। तो बोले कृष्ण के भक्त भगवान के नित्य संगी के रूप में उनका सानिध्य या तो वृंदावन में या वैकुंठ लोक में प्राप्त करते हैं, तो शत्रु है उनको सायुज मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन जो मित्र हैं भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनको वृंदावन या वैकुंठ का वास प्राप्त होता है, है कि नहीं। तो अर्जुन के जो बाण थे उन्होंने सबका शुद्धिकरण किया। ऐसे ही जगाई मधाई चैतन्य महाप्रभु लीला के अंदर, अब वो गुस्से से उन्होंने नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रहार किया था, लेकिन समहाउ वो नित्यानंद प्रभु के और उसी गुस्से में उन्होंने भगवान के नाम का उच्चारण किया था। तो रूप और सनातन गोस्वामी जब राम के लिए चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो वो यही कह रहे हैं उन्होंने गुस्से में आके आपके नाम का जप तो किया और इसीलिए वो क्या हो गए, परम पवित्र हो गए, ऐसे है। और फिर नित्यानंद प्रभु कृपा प्राप्त हुई उनकी उनको, तो रूप और सनातन कह रहे उनके लिए शुद्ध होना कोई बड़ी बात थोड़ी थी जगाई मधाई के लिए, क्यों, क्योंकि किसी ना किसी प्रकार से भगवान के दिव्य नाम के रूप में वो आ गए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक महान भक्त थे जिनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके जमाई दामाद का नाम क्या था, अमोघा। और ये अमोघा बड़ा ईर्ष्यालु था और बड़े सब में कमियां निकालता था, बड़ा द्वेष रखता था। और जब चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य ने आमंत्रित किया प्रसाद के लिए भिक्षा के लिए, तो बड़ा सारा व्यंजन बनाया था सार्वभौम भट्टाचार्य ने, पूरा बहुत ही दिव्य उनके लिए, और बताया ऐसे कि पूरा एक पहाड़ का चावल का पहाड़ बनाया था और उसके अंदर घी का शुद्ध गाय के घी का कुंड बनाया था ऐसे। तो और फिर अन्य अनेकों ने, कृष्ण कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जितना व्यंजन उन्होंने बनाया उसका वर्णन कई अनेकों श्लोकों में वर्णन करते हैं उनका, फिर बाद में कहते हैं मेरे लिए असंभव है वर्णन करना कि कितना व्यंजन उन्होंने बनाया था। और सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी उनकी धर्मपत्नी थी शाठीर माता जो थी, तो उन्होंने इतने व्यंजन बनाए। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने विशेष एक कमरा बनाया था चैतन्य महाप्रभु के लिए, एक अलग से जो है कमरा बनाया था कि यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करें। और उसके दो रास्ते थे, एक रास्ता जिसमें व्यक्ति अंदर प्रवेश कर सके और दूसरा था किचन से कनेक्टेड था, किचन से प्रसाद ला सके। तो उनको पता था ये अमोघा जो है मेरा दामाद है, ये बड़ा ईर्ष्यालु है और जब चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करने आएंगे तो क्या होगा, ये जरूर आएगा और कमी निकालेगा वहां पे। चैतन्य महाप्रभु तो सार्वभौम भट्टाचार्य लाठी लेके दरवाजे में खड़े थे कि आएगा तो मैं इसको भगा दूंगा। तो अमोघा आता था लेकिन देखता था सार्वभौम भट्टाचार्य लाठी लेके खड़े हैं तो भाग जाता था। लेकिन फिर जब सार्वभौम भट्टाचार्य अंदर प्रसाद लेने गए और तभी वो आया और बोले ये 10-10 आदमियों का प्रसाद एक सन्यासी अकेला खा रहा है यहाँ पे। और तभी सार्वभौम भट्टाचार्य वहां आगे डंडा लेके तो भागा जोर से और सार्वभौम भट्टाचार्य उनके पीछे भागे डंडा लेके, लेकिन वो बहुत देरी से भाग गया और उनके हाथ में नहीं आया। और सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी धर्मपत्नी को बड़ा क्रोध आया, बड़ी ग्लानी हुई और चैतन्य महाप्रभु क्षमा मांगी उन्होंने और साथ और वो बोल रही है कि अच्छा है मेरी बेटी विधवा हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। और सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं वो बड़े धर्म संकट में पड़ गए, कह रहे कि अल्टीमेटली अमोघा ने भी जो है एक ब्राह्मण इसका शरीर है, अब दो ही तरीके हैं, या तो मैं अपना वध कर लूं या इसका वध कर लूं। इसका वध करने का फायदा नहीं क्योंकि ये ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो ये शास्त्र उचित न्याय नहीं है कि इसका वध किया जाए, और संभव मेरा शरीर ब्राह्मण का है तो अपने शरीर का नाश भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बड़े परेशान थे, दुखी थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन उनके दुख को शांत करने के लिए महाप्रभु प्रसाद पाते रहे, बोले आप चिंता मत करो कोई दिक्कत नहीं आपका दामाद है उसके कोई बड़ी वो नहीं है। महाप्रभु ने पूरा प्रसाद ग्रहण किया और फिर चले गए लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य और जो है उनकी धर्मपत्नी ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। फिर महाप्रभु ने जो है गोपीनाथ आचार्य को भेजा उनके यहाँ पे और बोला सार्वभौम भट्टाचार्य को बुला के लेके आओ, और फिर उनको बोला कि नहीं आप प्रसाद ग्रहण करो, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ग्रहण करो, उनके सामने खिलाया। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को खबर प्राप्त हुई कि अमोघा क्या होने लगा है, उसको कॉलरा हो गया है, हैजा का रोग हो गया है और वो मरणासन है, मरने वाला है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े खुश हुए, बोले मैं उसका वध नहीं कर सकता था लेकिन भगवान के प्रति अपराध निंदा करने वालों को बिल्कुल सही सजा प्राप्त हुई है, अच्छा है वो मर जाए। लेकिन साथ चैतन्य महाप्रभु जैसे ही खबर उनको प्राप्त हुई तुरंत अमोघा के पास गए, उनकी छाती पे हाथ रखा और बोला कि ये जो मन है ये परम पवित्र स्थान है और हमें इसमें कृष्ण का निवास स्थान करना चाहिए, इसलिए इसको पवित्र रखना चाहिए। इस पवित्र स्थान के अंदर जिसको वृंदावन की भांति बनाना चाहिए तुमने इस चुड़ैल रूपी ईर्ष्या को क्यों रखा हुआ है, इसका त्याग कर दो और बोलो भगवान का नाम कृष्ण हरि। और तुरंत ही अमोघा जो है वो पश्चाताप करने लगा, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और कह रहे कि मैंने आपकी निंदा की है, आप परम प्रसन्न भगवान है। और फिर वो कृष्ण हरि का गुणगान करने लगा और बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर चैतन्य महाप्रभु सारंग भट्टाचार्य के पास गए और सारंग भट्टाचार्य को बड़ा क्रोध आया चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। वो कहते अच्छा होता वो मर जाता था, आपने क्यों उसको ठीक किया। तब सारंग भट्टाचार्य जो है बोलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु बोलते क्योंकि वो तुम्हारा दामाद है, वो तो तुम्हारा उसका संबंध है, तुम्हारी बेटी का वो पति है। यहाँ तक कि तुम्हारे सारे सेवक, तुम्हारे नौकर चाकर, तुम्हारे घर के कुत्ते बिल्ली गाय बछड़ा ये सब भी मेरे को बहुत प्रिय हैं और उन सब का भी मैं उद्धार करूंगा। ऐसे तो चले हम भी बता रहे हैं क्योंकि अमोघा को बोलते हैं क्योंकि तुम सारंग भट्टाचार्य के दामाद हो, इसीलिए। तो कहने का अर्थ क्या है, ये है कि कोई भी भक्त हो, अगर भक्त से हमारा संबंध है, भगवान संबंध है, उसको भगवान जरूर नोट करते हैं क्योंकि भगवान ट्रांसेंडेंटल है। ऐसे इसलिए इस दुनिया में हो सकता है हम सारे धन में, बड़े बड़े मकान के अंदर, कोई मुझे भक्त बता रहा था कि BMW गाड़ी ऐलान करते हैं कि BMW गाड़ी में कोई है तो रोड एक्सीडेंट में उसका वो मरेगा नहीं कभी, ऐसा उन चैलेंज दिया उन्होंने, अगर रोड एक्सीडेंट होता है और BMW गाड़ी में है तो मरेगा नहीं, संभव ऐसा मैं कोई भक्त बता रहे थे। तो कोई उस तरह BMW गाड़ी में सिक्योरिटी देखता हो, कोई मकान में, कोई धन में, कोई बॉडीगार्ड में, कोई अस्त्र शस्त्र में, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर, अनेक योजनाओं में कोई जो है सुरक्षा देखता हो, सिक्योरिटी देखता हो, आश्रय लेता हो, लेकिन दुनिया में सबसे अधिक सुरक्षित स्थान है यदि किसी वैष्णव के हृदय में हमारे लिए स्थान है, वो सबसे सुरक्षित स्थान है। क्योंकि वैष्णव के हृदय यदि हृदय में स्थान है तो भगवान के हृदय में भी स्थान है, ऐसा है कि नहीं। और यदि कोई भक्त हमसे प्रसन्न नहीं है तो भगवान हमारी ओर देखेंगे नहीं, ऐसा है। और भगवान से किसी प्रकार का कोई संबंध हो वो दिव्य है। इसलिए अगले श्लोक में बता रहे हैं तथा तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णम निवेशयेत, कि अतः मनुष्य को चाहिए जैसा भी हो चाहे मित्र बनकर शत्रु बनकर भगवान का चिंतन करे। तो ये चिंतन करना बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित होना, किसी ना किसी प्रकार से। और यही हम देखते हैं हमारे आसपास भी अनेक भक्त हैं जो अनेकों तरीकों से कृष्ण भावना भावित होंगे, है कि नहीं। कोई कृष्ण प्रसाद को देख के कृष्ण भावना भावित होते हैं, है कि नहीं। कोई कीर्तन को देख के कृष्ण भावना भावित होते हैं, तो किसी कोई केवल इंस्ट्रूमेंट बजा के कृष्ण भावना भावित होते हैं, है कि नहीं। कोई फिलोसॉफी पढ़ के कृष्ण भावना भावित होते हैं, तो कोई फंड कलेक्शन करके कृष्ण भावना भावित होते हैं। और कई ऐसे भक्त हैं उनको सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है लेकिन सेवा करना बड़ा अच्छा लगता है, वो मंदिर की सफाई करेंगे, कुछ ये करेंगे, क्यों करेंगे, बस वो सफाई या तो बाहर भी कर सकते हैं लेकिन मंदिर में आके सफाई करना उन्हें अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं और ये एक जो है कृष्ण के प्रतिनिधियों का या जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं या कह सकते हैं जो लीडर्स हैं, जो नेता लोग हैं, उनकी ड्यूटी है कि इस प्रकार किसी भी भावना को सही रूप से समझ करके और इनको एनकरेज करें कि इस भक्ति किस भावना से वो भगवान के प्रति कृष्ण भावना भावित है, उनकी उस कृष्ण भावना को डिस्टर्ब ना किया जाए। कोई धन देके कृष्ण भावना भावित है, कोई धन लेके कृष्ण भावना भावित है ना। तो अनेकों प्रकार से एक भक्त तो बहुत दक्ष होना चाहिए, इस रूप के होना चाहिए और अनुभवी होना चाहिए कि किस प्रकार अन्य लोग कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। क्योंकि कृष्ण का किसी भी रूप में मन चिंतन करने से, कृष्ण संबंध बनाने से उस व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, चाहे वो भौतिक दृष्टि से या एक सामाजिक दृष्टि से सही हो चाहे वो गलत हो। तो ये इस श्लोक से हमें एक प्रकार की शिक्षा मिलती है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो कृष्ण के संबंध में हो, कोई भी चीज हो चाहे कृष्ण के संबंध में हो, यह महत्वपूर्ण चीज है कि नहीं। तो वही इस श्लोक के अंदर बता रहे हैं गोप्या कामात भयात कमसो द्वैषा चैदादयो निर्वा संबंधात कृष्णया स्नेहा यूयम भक्तिया भयम विभो। लेकिन फिर भी बेस्ट है यदि हमें शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में, श्री प्रभुपाद जी की परंपरा में और चैतन्य महाप्रभु के अनुगत होकर हम कृष्ण को जानने का प्रयास करें तो हमें वो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है जो चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं। अनार्पिता चरिन चिरात करुणया अवतीर्णा कलव। और कृष्ण जो है हर किसी को नहीं प्रदान करते, क्यों, जो जिसका इच्छुक है उसे वही प्रदान करेंगे। यह था माम प्रपद्यंता सदैव भजाम्य हम, है कि नहीं। तो एक लास्ट स्टोरी से मैं इस कक्षा को विराम दूंगा कि एक बार एक राजा ने ऐलान किया कि मान लीजिए नरसिंह चतुर्दशी के दिन जिसको जो चाहिए मैं उसको प्रदान करूंगा, आप मांगने के लिए आ जाओ, जिसको जो चाहिए मैं उसे प्रदान करूंगा। सबने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सुबह सुबह से ही लाइन लग गई बहुत बड़ी, पूरा राज्य आ गया। कोई आया बोला मेरा घर ठीक नहीं है, घर बनवा दो। राजा ने बोला ठीक है, जो अपने मंत्री को बोला इसकी लिस्ट लिख लो, घर बनवा दो। किसी ने बोला मेरे यहाँ कुएं में पानी नहीं आता, आप पानी आके व्यवस्था करा दो, बोला ठीक है। किसी को बोला धन की कमी है तो धन दे दो। किसी ने बोला कि मेरे को जो है 1,00,000 रुपये चाहिए, बोला ठीक है ले लो। किसी ने बोला मेरे को गाड़ी रथ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, घोड़ा चाहिए, तो अरे वो सब करते गए। तो ऐसे शाम हो गई, राजा सबकी लिस्ट पूरी कर रहा था। तो एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि मैं चाहता हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, कोई संपत्ति नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मित्र बने, आप मेरे से मित्रता करें, मैं आपकी मैत्री चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। राजा ने बोला ठीक है, मैंने वचन दिया, तथास्तु, आज से हम दोनों फ्रेंड्स हो गए, वी आर फ्रेंड्स, बस ठीक है। और फिर दिन खत्म हो गया। तो कई दिनों बाद राजा को याद आया, अरे उस दिन तो मैंने इसका दोस्ती की थी, चलो दोस्त को मिलने जाते हैं। दोस्त ने मंत्रियों को बोला कि मैं फलाने दिन इस अमुक दिन जो हूँ इस मेरे दोस्त से मिलने जाऊँगा। तो मंत्रियों ने कहा अच्छा, फिर घर जाओगे तो सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो गए वहाँ पे, देखा घर पूरा टूटा फूटा खंडर सा हो रखा है, झोपड़पट्टी, बोले यहाँ तो राजा नहीं आएंगे, बोले तुरंत घर बनाओ यहाँ पे। फिर देखा ये तो बिल्कुल गली के अंदर है, सब सड़कें टूटी हुई हैं, तो सड़क बनवाई वहाँ पे, आसपास सब पेड़ पौधे लगवाए, गमले लगाए, पूरा उसका रेनोवेशन किया बढ़िया से एकदम, है कि नहीं। फिर बोला राजा यहाँ आएंगे तो उसके लिए बढ़िया बेड होना चाहिए, इस रूम में उनके लिए सोफा होना चाहिए, उस समय पता नहीं एयर कंडीशनर होते थे नहीं, पर एयर कंडीशनिंग होना चाहिए, बढ़िया टीवी होना चाहिए, है कि नहीं, होम थिएटर होना चाहिए, जो भी। तो सारा व्यवस्था वहाँ पे उन मंत्री लोगों ने किया, राजा को आना है यहाँ पे, और वो तो राजा का मित्र है तो राजा ही के एक्सपेंस सब कर रहे हैं। और तो फिर और सब लोग देख के हैरान, बोले ये अचानक से घर में क्या होने लग गया, सारा व्यवस्था ठीक हो गया, पानी का समस्या, बिजली का समस्या, सब फर्स्ट क्लास एकदम। फिर राजा वहाँ पे आया और तो और कुछ समय बिताया दोस्तियाँ, और फिर अब दोस्त हैं तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं, और सब लोग देख रहे हैं अरे राजा यहाँ है और क्या कर रहे हैं। और उस व्यक्ति का पूरी उस राज्य के अंदर ख्याति फैल गई, अरे ये व्यक्ति राजा का दोस्त है, ये राजा का दोस्त है। अब मान लीजिए अगर हम में से कोई किसी का अप्रोच हो किसी मिनिस्टर के साथ में, है कि नहीं, तो कितने लोग हमें अप्रोच करेंगे कि अरे भाई तुम उस मिनिस्टर से काम करा दो, हमारी रेलवे की टिकट कन्फर्म करा दो, है कि नहीं, या जो है यहाँ हमारी प्रॉपर्टी में कुछ अटका हुआ है, यहाँ ठीक करा दो, ये ठीक करा दो, है कि नहीं। तो सब उसके पूरे भाई ये राजा का दोस्त है, है कि नहीं। तो उसके जितने भी रुके हुए काम, तो उसके लिए अब सारे काम बिल्कुल आसान हो गए। तो कहने का अर्थ है कि दुनिया में भी लोग जाते हैं, मंदिर में जाएंगे भगवान के पास, भगवान जो कि अखिल असामृत मूर्ति हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनके पास जाते हैं, बोले मेरी शादी करा दो, जॉब दिलवा दो, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दो, पैसा दे दो, घर बनवा दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो। भगवान बोलते क्यों मेरे को डिस्टर्ब करो, जाओ लेना ले लो, है कि नहीं। लेकिन चैतन्य वहाँ प्रभुपाद ने क्या सिखाया, भगवान के पास जाओ, बोले भगवान हमें एकमात्र आप चाहिए, ऐसा है। दैट इज कॉल्ड अहेतु की अप्रतिहत्या भक्ति, ऐसा है कि भगवान और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप कुछ भी दे दो, कोई भी चीज दे दो, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता वा जगदीश काम ये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतु की त्वयि। और यही जो है गोपियों ने, दिस वॉज द पाथ ऑफ गोपीज, ये गोपियों का मार्ग था, उन्हें कुछ नहीं चाहिए केवल कृष्ण के अलावा। आशिलश्य वा पादरताम विनष्टु माम अदर्शनार मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सह एव नापरः। तो यदि कोई कृष्ण के इस भाव से आता है तो कृष्ण बड़ा टेस्ट लेंगे, क्या चाहिए भाई तुमको, टेस्ट करता हूँ। लेकिन जब आप पास हो जाए कि नहीं केवल और केवल कृष्ण चाहिए, देन कृष्णा बिकम्स परचेस्ड बाय डिवोशनल सर्विस। इसीलिए शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणी सथा, कि जो कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली जो है कृष्ण की भक्ति है। इसलिए जो भक्ति का मार्ग है हमें अहेतु की प्रति अदा भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि बाकी सब चीज तो अपने आप ही मिल जाएगी। कृष्ण गीता में कह रहे हैं क्या, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसलिए हो सकता है भौतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कुछ चीजें गलत हों, लेकिन कृष्ण के प्रति सारे संबंध दिव्य हैं और हमें प्रयास करना चाहिए भक्तों को कि सबसे उन्नत मार्ग हमें प्राप्त हुआ है तो इस मार्ग का हम पूरा फायदा उठाएं और अन्य किसी प्रकार लोअर अवसर से ना अट्रैक्ट होकर के इस टॉप मोस्ट जो चैतन्य महाप्रभु हमें देने के आए हैं उस रस का आस्वादन करें और प्राप्त करें। हरे कृष्ण। किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है एक तो पूछ सकते हैं। जय कृष्ण।
हरे कृष्ण ब्रोजी। थैंक यू वेरी मच ब्रोजी, वेरी नाइस लेक्चर। और ब्रोजी जैसे आप बता रहे थे वो राजा वाली स्टोरी आपने सुनाई कि राजा के पास एक व्यक्ति गया तो उसने बोला आई नीड यू, मैं आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो मतलब यही भाव हमारा भगवान के साथ होना चाहिए क्या कि मतलब फ्रेंडशिप वाला भाव रख सकते हैं भगवान के साथ या फिर कुछ और?
देखिए चैतन्य महाप्रभु का जो पाठ है ना, चाहे प्रभुपाद जी ने हमें साधना भक्ति दी है अभी कि हम शुद्ध नहीं हुए, लेकिन हमारा बाद में तो गोल है ही है रागानुगा भक्ति भाव भक्ति और ब्रज में जाना। तो जो है साधना भक्ति का जो बेसिस है वो है श्रद्धा, रेगुलर डिपेंस से फॉलो करते हैं, लेकिन जो रागानुगा भक्ति का जो बेसिस है वो है लौल्यम। जब वो इंटेंस ग्रिड हमारे अंदर नहीं हुआ है तब तक हम इस सक्षम और आत्मनिवेदन स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकते। एक भक्त से हमने प्रश्न पूछा था कि बाकी सात तो समझ आती है नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम मंत्रम दास्यम जो है ये सब, लेकिन ये सक्षम और आत्मनिवेदन क्या एक बद्ध जीव के लिए संभव है? तो उन्होंने बोला नहीं। कोई भक्त जो राग मार्ग पे आ जाए जो स्पॉन्टेनियसली भगवान से अट्रैक्ट लौल्यम हो जिसके प्रति, वो इसका पालन कर सकता है। तो एक इच्छा होना गलत बात नहीं है, लेकिन अभी फ्रेंड बन के बोले डीटीस के कंधे में हाथ रख रहे यू नो देन विल बिकम सहज।
बहुत बहुत धन्यवाद ब्रोजी आपका।
आपका
ब्रोजी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि बाहर के लोग जो हैं जो कई बार हम देखते हैं कई बार द्वेष करते हैं हरे कृष्णा भक्तों से और मतलब सम और अदर देयर टेकिंग नेम्स उस तरह से नाम भी लेते हैं, तो हम जैसे देखते हैं कि रशिया में जैसे बैन हुआ गीता को बैन किया, कई बार रथ यात्रा को बंद कर देते हैं, कई बार टेम्पल क्रैश कर देते हैं मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो हाउ डू दे गेट मर्सी मतलब वो उनको कैसे कृपा मिलेगी? क्योंकि हम ये भी सुनते हैं हरि नाम में जो अपराध सबसे पहला कि भगवान नाम के प्रचार में लगे हुए भक्तों की निंदा करना या उस तरह से, तो कैसे मतलब उनको कैसे?
अभी प्रभु जी का प्रश्न है कि जो भक्त ईर्ष्यालु हैं और कृष्ण महानामृत के प्रचार में बाधा डालते हैं, जैसे कल ही हमारे पास शिमला में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, एक व्यक्ति बड़ा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, शिमला की जो मॉल रोड है वहाँ पे बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था और अचानक से व्यक्ति आया वहाँ पे और पूरा हंगामा, पुलिस को भी वहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि कोई कि वो भी कुछ कह रहे हो, लेकिन वो आया व्यक्ति और चिल्लाने लगा बड़े जोर जोर से मैं पूरी शिमला में ये नहीं होने दूंगा, तुम लोग ये कर रहे हो वो कर रहे हो, और समा वो इस्कॉन के लाइफ मेंबर भी थे, बॉम्बे फ़ोन किया उन्होंने बोला भी अच्छा कार्य कर रहे हैं करने दो, वहाँ के लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आया और चिल्लाने लगा तुम्हारे भक्तों ने स्थान चेंज कर लिया वहाँ से कुछ समय के लिए। तो ऐसे लोगों को कैसे कृपा प्राप्त होगी ये तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो अन्य को कृपा बांटने में बड़े सहायक होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी कर देते हैं। जैसे रशिया में जब गीता बैन हुई तो और किसी को कुछ नहीं, वो प्रभुपाद जी गीता सबको चाहिए, बोले यही गीता वहाँ पे आई थी, है कि नहीं? अभी कोई बात बता रहा था एक मूवी रिलीज हुई थी ओ माई गॉड, तो उसके अंदर जो है प्रभुपाद जी गीता दिखाई थी, बोले वाली गीता ये जो ओ माई गॉड में दिखाई थी। तो ऐसे कई लोगों ने गीता ले ली है कि नहीं? तो आपको आई डोंट नो उन्होंने वहाँ निंदा किया प्रशंसा किया जो भी है, बट ऐसे लोग अन्य को कृपा बांटने में बड़े वो हो जाते हैं, वो बड़ा ड्रामा करेंगे तो लोगों को लगे कुछ तो है यहाँ पे, चलो लेके जाते हैं, है कि नहीं? तो इससे भी लोग बड़े प्रभावित होते हैं। या जैसे प्रभुपाद जी के टाइम में भी ये एक किसी ने अखबार के अंदर बड़ा आलोचनाजनक आर्टिकल लिखा था हरे कृष्णा के बारे में, तो प्रभुपाद जी ने पूरा आर्टिकल पढ़ा, भक्तों ने बोला काउंट करो इसमें कृष्णा कितनी बार लिखा है, 19 या 23 ऐसे बार कुछ लिखा था, पर बोले सो देखो 19-23 बार इसने कृष्ण का नाम लिखा, जो पढ़ेगा वो इतनी बारी कृष्ण का नाम उच्चारण लेगा। तो महाभागवत जो भक्त होते हैं उनकी ये दृष्टि होती है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम जाके सबको जो है ऐसे कार्य करें कि सबको हरे कृष्ण महानंदोल के प्रति जो है ईर्ष्यालु बना दे ताकि वह भगवान का नाम ले, इसका मतलब ये नहीं है। कभी आप इसके एप्लीकेशन में ये निकाल दें कि ऐसे ऐसे कार्य करें लोगों को परेशान करें ताकि वो गुस्से में आके हरे कृष्ण वालों बोलने लगे, लेकिन हरे कृष्ण वालों छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, हरे कृष्ण वालों का मंदिर बंद करा दूंगा, इसका अर्थ ये नहीं है, है कि नहीं? तो अभी उनका कैसे कृपा प्राप्त होगी, तो भगवान जाने, महाभागवत जाने, ऐसा है। लेकिन ये है कि चाहे कोई कितना भी ईर्ष्यालु हो, भगवान के भक्तों को उनके प्रति करुणा रखनी चाहिए कि इस व्यक्ति को अंदर ये ईर्ष्यालु रूप चुड़ैल है, तो हे भगवान से प्राप्त। जैसे नित्यानंद प्रभु ने जो सहनशील होकर के या उन जगह मदाई को माफ़ कर दिया, मार खे ये प्रेम दय नित विचार तो नए दयालिता चैतन्य बोले नाच अमर मन, और नित्यानंद ने क्षमा कर दिया, चैतन्य महाप्रभु ने अमोघा को क्षमा कर दिया। तो इसलिए जो है एक प्रचारक को अपने प्रति ऑफेंस नहीं लेना चाहिए कि उसको सहनशील होना ही चाहिए। अगर प्रचार करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हमको मिलेंगे ही जो संकट प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण श्री ग्रंथराज भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, आपसे भक्तों में बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।